का था, रूह वही, रूप नया।
फरीदी और लियोनार्ड के भाग दो में आपने सुना कि किस तरह देश के मशहूर जासूसों की मीटिंग लियोनार्ड को पकड़ने के लिए बैठाई गई, किस तरह फरीदी उन जासूसों के काम करने के तरीके से थोड़ा नाखुश नजर आया, और कौन थी वो औरत जो बारिश की उस रात फरीदी के बरामदे में आकर बेहोश हो गई थी, क्या वास्ता है उसका लियोनार्ड की ब्लैकमेलिंग से, ये सब आपने जाना भाग दो में। क्या फरीदी उस औरत को लियोनार्ड की ब्लैकमेलिंग से बचा पाएगा, और ऐसी कौन सी ट्रिक है फरीदी के पास जो वो लियोनार्ड को पकड़ सके, सुनिए भाग तीन में। देर रात तक जागते रहने की वजह से फरीदी दिन चढ़े तक सोता रहा। अगर हमीद आकर जगाता नहीं तो शायद वो देर तक सोता रहता। फरीदी ने लेटे लेटे एक बड़ी सी अंगड़ाई ली और हमीद को मेज पर से सिगार का डिब्बा उठाने के लिए कहा। मैं उस तरफ नहीं जा सकता, हमीद ने बेसाख्ता कहा।
क्यों भाई?
उधर किसी औरत के कपड़े रखे हैं, मुझे शर्म आती है, हमीद जनहाना अंदाज में नाक पर उंगली रखते हुए बोला। फरीदी मुस्कुराने लगा। उठाते हो या उठकर मरम्मत कर दूं तुम्हारी? माफ कीजिएगा, अफसरी और मातहती दुनिया ही तक है, जहन्नुम की आग आपके गुस्से से ज्यादा भयानक न होगी, हमीद ने संजीदगी से कहा। अच्छा मौलाना ए मोहतरम, दफा हो जाओ यहां से वरना, फरीदी ने उठते हुए कहा। अरे तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, लीजिए ना सिगार, हमीद ने सिगार का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। देखो अगर वो साड़ी सूख गई हो तो उसको तह करके रख दो।
जी,
हमीद जोर से चीखा, कसम है उस खुदा की जिसने मुझे मर्द और आपको औरत बनाया, अरे लाहौल विला कुवत, दोनों को मर्द बनाया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अरे क्या बकते हो,
नहीं नहीं अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तोबा तोबा, हमीद ने कहा।
क्यों?
फरीदी मुस्कुरा कर बोला, इसलिए कि अब यहाँ अय्याशी होने लगी है, अगर वालिद साहब को खबर हो गई तो वो तो मुझे कत्ल ही कर देंगे, हमीद ने संजीदगी से कहा। अरे क्या फिजूल बकबक लगा रखी है।
सब फिजूल तो है ही, रात वाली तस्वीर लियोनार्ड की धमकी थी, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। और ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये लेडीज कोट, ये सब भी शायद धमकी ही है।
हाय तौबा तौबा, अरे अल्लाह मियाँ, आखिर कयामत कब आएगी? फरीदी हंसने लगा।
अरे भाई तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ, फरीदी ने कहा।
आप आदमी कब से हो गए, आप तो कहा करते थे कि मैं जासूस हूँ, हमीद ने कहा।
गधे जासूस नहीं हुआ करते।
ये बात आज ही समझ में आई है, फरीदी खामोश हो गया। वो सोच रहा था कि हमीद को रात का वाकया बताए या ना बताए, आखिर उसने यही फैसला किया कि हमीद को भी उससे आगाह कर ही दे, क्योंकि फरीदी उससे बहुत ही अहम काम लेने वाला था। हमीद सारी दास्तान सुन चुकने के बाद कुर्सी से ब्लाउज उठाकर सूंघने लगा।
अरे ये क्या हरकत है,
फरीदी ने संजीदगी से कहा।
सूंघ रहा हूं कि उसकी उम्र क्या हो सकती है, रात वाली तस्वीर देखने के बाद से मैं आपकी तरफ से थोड़ा बेइत्मीनान हो गया हूँ,
फरीद ने कहा। अबे गधे, किसी वक्त तो संजीदा हो जाया कर, फरीदी ने कड़क आवाज में कहा।
अगर मैं गधा हूँ तो मेरी संजीदगी में आपको शक ना होना चाहिए।
अच्छा अच्छा, अब बकवास बंद करते हो या तुम्हारा गला दबा दूं, फरीदी ने उठते हुए कहा।
बस खुदा की कसम, एक झलक मुझे भी दिखा दीजिए।
हमीद ने हंसकर कहा।
क्यों, क्या करेंगे आप देखकर?
तौबा करूंगा, कान पकड़ूंगा,
उसके नहीं बल्कि अपने,
हमीद ने कहा। तौबा इसलिए करूंगा कि अभी तक मैं आपको बिल्कुल गलत समझता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब होने वाला है, खरी बात कहने वाले हमेशा पागल ही समझे जाते हैं।
अच्छा बरखुरदार, मेरा पीछा छोड़ो, तुम तो नाश्ता कर चुके होगे और यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है।
लेकिन मैंने सुना है कि आशिकों को भूख ही नहीं लगती, हमीद ने कहा।
अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो वरना आज ही शादी कर लूंगा। हमीद ने फरीदी का जुमला पूरा किया। फरीदी बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। हमीद साड़ी, ब्लाउज, ओवरकोट को बड़ी देर तक उलट पलट कर देखता रहा। तभी उसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई। वो हंसता हुआ बरामदे से निकल आया। फरीदी बरामदे में बैठा शेव कर रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, हमीद ने बुलंद आवाज में कहा। क्या है भाई, क्यों बेकार गला फाड़ रहे हो? फरीदी ने तेज आवाज में कहा। किसी ने ठीक ही कहा है कि डाकू और जासूस हमेशा औरतों ही के चक्कर में पकड़ कर मारे जाते हैं। क्या बकवास लगा रखी है? बकवास नहीं सरकार, आखिर आप भी औरत ही के चक्कर में पड़कर बर्बाद हुए। फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाया और कोई जवाब दिए बगैर शेव करता रहा। आप शायद मजाक समझ रहे हैं, हमीद ने कहा। और आप शायद हवा से बातें कर रहे हैं, फरीदी बोला। मैं कोई हातिमताई का घोड़ा हूं जो हवा से बातें करूंगा? नहीं नहीं, तुम वॉल्टर स्कॉट के गधे हो, आप मजाक में टाल रहे हैं। बा खुदा मैं इस वक्त 100% संजीदा हूं। अच्छा कहो क्या कहना है? गजाला आपको बेवकूफ बना गई। क्या मतलब? फरीदी ने चौंक कर कहा। देखिए, हमीद ने उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, आपकी गजाला की अंदर की जेब से बरामद हुआ है। फरीदी कागज को पढ़ने लगा। आज रात को फरीदी के घर जाकर सारी बातें पता कर लो। एल। फरीदी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। इस एल का मतलब शायद लियोनार्ड होगा, हमीद ने कहा। लेकिन एक बात तो सोचो कि अगर वाकई वो मुझे धोखा देने के लिए आई थी तो फिर उसने इतनी लापरवाही से काम क्यों लिया? फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर उसकी नीयत में खराबी होती तो वो ये कागज जेब में हरगिज ना छोड़ कर जाती। क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत थी? हमीद ने कहा। हाँ, ऐसी लड़कियां कम ही देखने में आती हैं, फरीदी ने जवाब दिया। तभी आप उसे बेगुनाह समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा जरा जल्दी से कार निकालो, फरीदी ने तौलिए से चेहरा साफ करते हुए कहा। लड़की खतरे में मालूम होती है। क्या मतलब? अरे चलो चलो जल्दी करो, आखिर बात क्या है? ये पुर्जा उसके जाने के बाद रात में किसी वक्त कोट की जेब में रखा गया है, फरीदी ने कहा। नामुमकिन, रात में यहाँ कौन आने की हिम्मत कर सकता है? हमारे कुत्ते तो किसी को जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे, हमीद ने कहा। अरे यही तो गलती की थी कि गजाला के आने के बाद मैंने सारे कुत्तों को बंद कर दिया था और फिर उसके बाद उन्हें खोलना भूल गया था। ओह, तब तो फिर आपका कहना दुरुस्त होगा, हमीद ने बरामदे से उतरकर गैरेज की तरफ जाते हुए कहा। कुछ देर बाद फरीदी की कार तेजी से गुलिस्ता होटल की तरफ भागी चली जा रही थी। वहां पहुंचकर फरीदी को एक बैरे की जबानी मालूम हुआ कि गजाला अपने कमरे में मौजूद है और अभी अभी सो कर उठी है। फरीदी सीधा उसके कमरे में चला गया। वो उसे देखकर उठ बैठी। उसकी आंखें देर तक सोते रहने की वजह से अभी तक बंद हो रही थीं और जिनमें पड़े हुए लाल डोरों ने उसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। जुल्फें बेतरतीबी से माथे पर बिखरी हुई थीं। चेहरे की लाली मिले गोरे रंग में कुछ कुछ सलोना पना गया था। आपने तो कहा था कि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, वो हैरान होकर बोली। ख्याल तो यही था, लेकिन अब मैंने अपनी स्कीम बदल दी है, फरीदी ने उसे गौर से देखते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। गजाला उसे अपनी तरफ इस तरह घूरते देखकर शर्मा गई और झुककर अपनी साड़ी का आंचल ठीक करने लगी। फरीदी कश्मकश में पड़ गया कि उससे क्या कहे। वो सोच रहा था कि अगर वाकई वो उसे धोखा देने की गरज से आई थी तो उसे अब तक गायब हो जाना चाहिए था, और अगर लियोनार्ड ने उसकी तरफ से उसके मन में शक पैदा करने की कोशिश की थी तो उसके शक को और मजबूत करने के लिए खुद उसे ही गजाला को गायब कर देना चाहिए था। मगर नहीं, शायद वो गजाला को इसी तरह सजा देना चाहता था कि पुलिस वाले उस पर शक करके उसे गिरफ्तार कर लें। बहरहाल ये तो फरीदी पर अच्छी तरह साफ हो गया था कि लियोनार्ड उसके मंसूबों से अच्छी तरह आगाह हो गया है। तो फिर फरमाइए कैसे तकलीफ की, गजाला ने पूछा।
आपसे इस बात का पूरा सबूत लेने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप नवाब रशीदुज़्ज़मा की ही साहबजादी हैं।
गजाला चौंक पड़ी, वो उसे हैरत से देख रही थी। लेकिन रात तो आप मुतमईन हो गए थे।
मैंने धोखा खाया था, फरीदी ने कहा।
समझ में नहीं आता कि आपको कैसे यकीन दिलाऊं,
गजाला ने कुछ परेशान होकर कहा।
आखिर अचानक आपके दिल में यह ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रही हूं?
बात ही ऐसी हो गई है, अगर आप ये न साबित कर सकें तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। हिरासत का नाम सुनकर गजाला के माथे पर बल पड़ गए, आंखें गुस्से से लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे।
क्या कहा, हिरासत?
वो गरज कर बोली, आपकी औकात ही क्या है, एक मामूली इंस्पेक्टर, बदतमीज कहीं के। फरीदी मुस्कुराने लगा। शहजादी साहिबा, मेरी औकात तो उस वक्त मालूम होगी जब आप हवालात की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। फरीदी ने बुरे अंदाज में कहा, जरा यह कागज देखिए।
इसका क्या मतलब है?
गजाला कागज के टुकड़े को पढ़कर बोली।
ये टुकड़ा शहजादी साहिबा के कोट से बरामद हुआ है, फरीदी ने कहा।
अचानक गजाला के चेहरे का रंग उड़ गया।
लेकिन खुदा की कसम, मैं नहीं जानती कि ये कागज कैसा है, वो हकलाने लगी।
आप नहीं जानती? ये तो और भी अजीब बात है, फरीदी मुस्कुरा कर बोला।
मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं,
गजाला बेबसी से बोली।
मेरी औकात ही क्या है जो आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं,
फरीदी ने बुरे से अंदाज में कहा। गजाला खामोश हो गई, उसके चेहरे पर अचानक ऐसा जाहिर होने लगा था जैसे वो बरसों से बीमार है।
अब आप मुझे सिर्फ एक ही तरह से इत्मीनान दिला सकती हैं,
फरीदी ने कहा।
वो कैसे,
गजाला जल्दी से बोली। अभी और इसी वक्त मेरे साथ राजरूप नगर चलिए, अगर वहां नवाब वजाहत मिर्जा या उनके लड़के शौकत ने आपको पहचान लिया तो क्या कहने, वरना फिर मैं जो मुनासिब समझूंगा वो करूंगा।
मंजूर,
गजाला खुशी से चीखी। अच्छा तो जल्दी तैयार हो जाइए,
लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि आप उन पर ये बात न जाहिर होने दीजिएगा कि आपका मकसद क्या है।
इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। गजाला ने कपड़े बदले और दोनों कार में बैठकर राजरूप नगर की तरफ रवाना हो गए।
मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, गजाला बोली।
यही हाल मेरा भी है, जैसे ही ये कागज मुझे मिला मैं सीधा आप ही के पास चला आया।
अगर आप वहीं बता देते तो हम नाश्ता करके रवाना होते,
गजाला ने कहा। खैर कोई बात नहीं, पीटर रोड पर एक अच्छा होटल है, हम लोग वहीं नाश्ता कर लेंगे।
मैं भी अजीब मुसीबत में पड़ गई हूँ, गई थी आपसे मदद लेने, उल्टा खुद ही मुजरिम बन बैठी,
गजाला बोली। घबराइए नहीं, अगर आप सच्ची हैं तो आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान तक देने का वादा करता हूँ, फरीदी ने कहा।
खैर वे सब बातें बात की हैं, अभी तो मैं परेशानियों से जूझ रही हूँ।
लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो न था, दोनों खामोश हो गए। पीटर रोड पर पहुंच कर फरीदी ने कार की रफ्तार कम कर दी। कृष्णा होटल की शानदार इमारत के सामने पहुंच कर दोनों कार से उतर पड़े। फरीदी ने नाश्ते का ऑर्डर दिया। नाश्ता करने के बाद फरीदी ने सिगार सुलगाया और कुर्सी पर टेक लगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा।
वेटर,
गजाला ने करीब से गुजरते हुए एक बैरे को आवाज दी।
जी मैम साहब।
बाथरूम किधर है?
ऊपर मैम साहब, सीढ़ी से दाहिने पर,
बैरे ने कहा और आगे चला गया।
मैं भी आई,
गजाला ने फरीदी से कहा और उठकर चली गई। फरीदी बदस्तूर अधखुली आंखों से छत की तरफ देखता हुआ सिगार के कश ले रहा था। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15-20 और फरीदी अचानक उछल पड़ा।
बाथरूम और इतनी देर?
बेतहाशा सीढ़ी की तरफ भागा, बाथरूम खाली था। उसने होटल के सारे बाथरूम देख डाले लेकिन गजाला का कहीं पता न था। उसने उसे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन कामयाबी न मिली। आखिरकार थक हार कर वो वापस आ गया। गुलिस्ता होटल में उसने गजाला के कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई संदिग्ध चीज न मिली। घर पर हमीद उसका इंतजार कर रहा था। फरीदी ने वापसी पर उसे सारा हाल कह बताया।
देखिए, मेरा ख्याल कभी गलत साबित नहीं होता,
हमीद चहक कर बोला, अरे वाह क्या कहने आपके। फरीदी ने जल कर कहा, डाकू या जासूस हमेशा औरत ही के चक्कर में पड़कर मारा जाता है। तुम्हें बातें बनाने के सिवा कुछ और आता भी है? फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फरमाइए मेरे लायक कोई खिदमत? हमीद ने कहा, आपके लायक सबसे बड़ी खिदमत यही है कि आप ऐसे मौके पर खामोश रहकर मुझे सोचने दिया कीजिए।
ठीक है, अगर किसी जगह पर आप सोचते सोचते ठहर जाएं, तो मुझे याद कर लीजिएगा,
हमीद ने संजीदगी से कहा। बहुत अच्छा, अब आप तशरीफ ले जाइए। हमीद मुस्कुराता हुआ चला गया, फरीदी उसे घूर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो गहरी सोच में डूब गया, उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने मंसूबों से किसी को भी आगाह न करेगा। उसे सख्त हैरत थी कि आखिर उसकी बनाई हुई स्कीमों से लियोनार्ड किस तरह वाकिफ हो जाता है। हमीद फरीदी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर उसने उसे ज्यादा छेड़ना मुनासिब न समझा। वो ये भी जानता था कि फरीदी पर इस किस्म की सोच के दौरे कभी कभी पड़ा करते थे, और उसके बाद वो ऐसे ऐसे भयानक काम कर डालता था कि जिनके ख्याल ही से अच्छे अच्छों को हैरानी हो जाती थी। खाने के दौरान भी उन दोनों में कोई बात ना हुई। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके दोनों दफ्तर रवाना हो गए। अभी फरीदी अच्छी तरह बैठने भी ना पाया था कि जैक्सन के यहां से बुलावा आ गया।
क्यों भाई, खैरियत तो है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, जैक्सन ने कहा।
क्या बताऊं, आज बड़ी गहरी चोट हो गई, फरीदी ने नर्म आवाज में कहा। उसके बाद उसने सारी कहानी जैक्सन को बता दी।
तुमने बहुत बड़ी गलती की, जैक्सन ने हाथ मलते हुए कहा।
मैं उस लड़की को फौरन हिरासत में लेना चाहिए था। अफसोस, बहुत अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। अगर वो गिरफ्तार हो जाती तो लियोनार्ड भी बच नहीं पाता। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि लियोनार्ड को गिरफ्तार कर लेना कोई हंसी ठट्ठा नहीं है।
खैर, मैं दुनिया में किसी भी बात को नामुमकिन नहीं समझता, जैक्सन ने कहा।
लेकिन साहब, मुझे तो उसकी गिरफ्तारी नामुमकिन ही नजर आ रही है, फरीदी मायूसी से बोला।
मुझे हैरत है, मैंने कभी तुम्हारे मुंह से इस तरह का मायूस जुमला नहीं सुना,
जैक्सन ने ताज्जुब से कहा।
पहले कभी इतने भयानक आदमी से मुकाबला भी नहीं हुआ ना।
कुछ भी सही, लेकिन कम से कम तुम्हारे मुंह से इस किस्म के जुमले कुछ अच्छे मालूम नहीं होते, जैक्सन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा।
ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, लेकिन मैं इसी में अपनी भलाई समझता हूँ कि खामोशी से बैठ जाऊं, फरीदी बोला।
क्या मतलब, क्या तुम इस केस से हाथ उठाना चाहते हो, जैक्सन ने चौंक कर कहा।
जी हाँ, अगर इस पर मेरे अफसर राजी ना हुए तो मजबूरन मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, फरीदी ने कहा।
भाई, आज मैं तुम्हारे मुंह से बड़ी अजीब अजीब बातें सुन रहा हूँ, आखिर तुम्हें किस बात का डर है,
जैक्सन ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। जरा ये तस्वीर देखिए, फरीदी ने उसकी तरफ एक तस्वीर बढ़ा दी। जैक्सन तस्वीर देखते ही उछल पड़ा। कभी वो फरीदी की तरफ देखता था और कभी तस्वीर की तरफ।
ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बीवी है, तो क्या तुम?
जी हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इस बूढ़े औरत के साथ।
तो फिर इसका क्या मतलब है,
जैक्सन ने हैरत से कहा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस केस से हाथ न उठाया तो लियोनार्ड इस तस्वीर की एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भिजवा देगा।
ये तुम्हें मिली कैसे,
जैक्सन ने पूछा। फरीदी ने सारा वाकया सुना दिया।
तो इसका ये मतलब है कि प्रिंस अदनान को शक के बिना पर हिरासत में लेना चाहिए?
ये काम इतना आसान नहीं, हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो इराक के शाही खानदान से ताल्लुक रखता है।
कहीं वही लियोनोश तो नहीं है,
जैक्सन जल्दी में बोला। खुदा बेहतर जानता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, फरीदी ने कहा।
अच्छा, क्यों ना उन अखबार वालों को पकड़ा जाए,
जैक्सन ने पूछा।
उनके खिलाफ भी तो कोई ठोस सबूत नहीं है।
वाकई ये मामला तो बहुत पेचीदा है, और इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ।
तुम बहुत अजीब आदमी हो, बस एक तस्वीर से डर गए।
अरे मियाँ, ऐसे चमत्कार तो हर फोटोग्राफर दिखा सकता है। लेकिन कोई शौहर उसे मानने के लिए तैयार न होगा।
खैर, अंग्रेज शौहर इतने सख्त नहीं होते, जैक्सन ने गर्व से कहा।
न होते हों, लेकिन अगर इसी तरह किसी हिंदुस्तानी शौहर से वास्ता पड़ गया तो मैं तो कहीं का ना रहूंगा।
आखिर तुम डरते क्यों हो, मैं तो मौजूद हूं ना, जैक्सन बोला।
नहीं साहब, बात दरअसल ये है कि मैं अपनी नौकरी से कुछ तंग आ गया हूँ।
हाँ, ये और बात है, लेकिन मैं तुम्हें किसी तरह इसकी राय नहीं दूंगा कि तुम इस मामले को अधूरा छोड़कर चले जाओ, इससे तुम्हारे पिछले कारनामों पर भी खाक पड़ जाएगी, जैक्सन ने कहा।
साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, फरीदी ने कुढ़ कर कहा।
अपनी छानबीन जारी रखो, अगर तुमने ये काम को अंजाम दे दिया तो सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा।
ये मेरे लालच के लिए कम नहीं। खैर, मैं कोशिश करूंगा, वैसे मुझे कामयाबी की 1% भी उम्मीद नहीं है।
तुम नवाब रशीदुज़्ज़मा से मिलकर इस चीज की तस्कीद क्यों नहीं करते कि क्या तुम्हें धोखा देने वाली हकीकत में उनकी लड़की ही थी?
मेरे ख्याल से वो बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि इस किस्म की कोई भी लड़की अपना सही पता ठिकाना नहीं बता सकती।
तुम्हारा ये ख्याल भी सही मालूम होता है, फिर आखिर अब तुम क्या करोगे?
न्यू स्टार के दफ्तर की निगरानी। ये बात अब मंजिल को पहुंच गई है कि लियोनार्ड इसी अखबार के जरिए अपना जाल फैला रहा है, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा।
पहले मैं भी इसे तुम्हारा शक समझता था, लेकिन अब मुझे भी कुछ कुछ यकीन आ गया है, जैक्सन बोला। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस तरह भी हम लियोनार्ड को पा नहीं सकेंगे।
ये और बात है कि उसके कुछ एजेंट्स गिरफ्तार हो जाएं, वो खुद मालूम नहीं किस तहखाने में बैठा है और अपना काम कर रहा है। बहरहाल, कुछ भी हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
सच पूछिए तो मैं आप ही के हिम्मत दिलाने पर अब तक डटा हुआ हूँ, वरना कभी का अलग हो गया होता।
बात ये है कि मैं तुम्हें सारी दुनिया में मशहूर देखना चाहता हूँ।
शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब मैं 3-4 दिन तक दफ्तर ना आ सकूंगा, फरीदी ने उठते हुए कहा।
क्यों? जैक्सन ने चौंक कर पूछा।
मैं न्यू स्टार के दफ्तर के कोने कोने की जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, फरीदी बोला।
लेकिन तुम वहां किस हैसियत से रहोगे, ये भी तो बता दो, ताकि वहां तुम्हारी हिफाजत की जा सके।
मैं वहां मामूली मजदूर के भेस में रहूंगा, घनी सफेद दाढ़ी, फूली हुई नाक और माथे पर गहरे जख्म के निशान, फरीदी कुछ सोचते हुए बोलने लगा।
जैक्सन ने खुशी से सिर हिलाया और फरीदी उठकर चला गया। उसी दिन रात को फरीदी घर पर सार्जेंट हमीद को हिदायत दे रहा था।
मेरे बताए हुए हुलिये के बूढ़े के भेस में तुम्हें न्यू स्टार के दफ्तर में रहना होगा, और उस वक्त तक तुम वहां मौजूद रहोगे जब तक कि मैं तुम्हें वहां से हटा ना दूं, फरीदी ने कहा।
उसने हमीद को पूरी स्कीम बता दी।
मैं वहां खपूंगा कैसे, अगर इस शक्ल का वहां कोई और हुआ तो, हमीद ने कहा।
अगर वहां इस शक्ल का कोई आदमी ना होता तो मैं ये प्रोग्राम ही ना बनाता, फरीदी ने कहा।
तो फिर उस आदमी को वहां जाने से कैसे रोकेंगे, हमीद ने पूछा।
अरे भाई, वो सब मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम फौरन तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह उसकी सूरत जहन में बिठा लो। थोड़ी देर बाद दोनों शहर के एक घटिया से शराब खाने में पहुंचे। यहाँ एक शराब खाना भी था और एक होटल भी। बाहर से आए हुए कम हैसियत वाले मुसाफिरों के लिए यहाँ सस्ते कमरे भी मिल जाया करते थे। फरीदी और हमीद को देखते ही होटल का मैनेजर लपक कर उनके करीब आ गया।
कहिए हुजूर, खैरियत तो है, उसने मुस्कुरा कर कहा।
मेरे कमरे की चाबी, और हाँ, फजलू को जरा भेज दो, फरीदी ने कहा।
मैनेजर ने फरीदी को एक चाबी लाकर दे दी। फरीदी और हमीद सीढ़ियां चढ़कर एक बंद कमरे के सामने आकर रुक गए। फरीदी ने ताला खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। फरीदी ने माचिस जलाकर ताक पर रखी हुई मोमबत्ती जलाई।
ये आपका कमरा है, हमीद ने हैरत से पूछा।
हाँ, ऐसे बहुत सारे कमरे मैंने शहर के अलग अलग हिस्सों में ले रखे हैं, फरीदी ने कहा।
और मुझे इनके बारे में नहीं मालूम, हमीद ने पलखे झपकाते हुए पूछा।
हाँ, यूं ही मौका पड़ने पर तुम्हें भी धीरे धीरे इनके बारे में मालूम हो ही जाएगा। जानते हो होटल का मैनेजर कौन है?
नहीं।
एक बदमाश और 10 नंबर का आदमी, मगर है बड़े काम का, फरीदी ने कहा। सीढ़ी पर आहट सुनाई दी और कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी कमरे में आया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। फजलू, तुम न्यू स्टार प्रेस में ही काम करते हो ना? फरीदी ने कहा।
जी हुजूर।
अच्छा देखो, तुम्हें कुछ दिन तक इसी कमरे में रहना होगा और तुम्हारे भेस में ये तुम्हारा काम करेंगे।
अरे हुजूर, कोई खास काम हो तो मुझे ही बता दीजिए,
बूढ़ा बोला। नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकोगे।
ठीक है, जैसी हुजूर की मर्जी। 1 घंटे बाद मुझे काम पर तो जाना ही होगा, आजकल नाइट ड्यूटी में हूँ,
बूढ़े ने कहा। हमीद, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें फजलू बनाए देता हूँ, फरीदी ने कहा और कमरे में रखे हुए एक बड़े संदूक को खोलकर उसमें भेस बदलने जैसा सामान निकालने लगा। थोड़ी देर के बाद उस कमरे में एक ही शक्ल के 2 बूढ़े खड़े हुए थे। उनमें से एक बूढ़ा बाहर चला गया और दूसरा वहीं खड़ा रहा। हाँ तो फजलू, जब तक तुम्हें मेरी तरफ से कोई खबर ना मिले, तुम यहीं इसी कमरे में रहना, मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहीं पहुंचती रहेंगी। अब फरीदी ने भी भेस बदलना शुरू किया। लगभग 1/2 घंटे के बाद उसकी जगह पर एक अधेड़ उम्र का मिलिट्री अफसर खड़ा सिगार पी रहा था। फजलू उसे हैरत से देख रहा था। फजलू, मुझे खबर मिली है कि तुमने फिर कोकीन का कारोबार शुरू कर दिया है, फरीदी ने कहा।
अब सरकार से क्या पर्दा, प्रेस की नौकरी में इतना नहीं मिलता ना कि जिससे पेट पल सके, महीने में 1000 रुपए तो सिर्फ बाल बच्चों के लिए गांव ही भेजना पड़ते हैं,
फजलू ने सिर खुजाते हुए कहा। खैर, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मामला मेरे हाथ तक ना पहुंचने पाए, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा, फरीदी ने कहा।
अरे नहीं नहीं सरकार, ज्यादा नहीं, बस ढेले दमड़ी का रोजगार करता हूँ,
फजलू ने सिर हिलाकर कहा। खैर, तुम लोगों का ढेला दमड़ी में अच्छी तरह समझता हूँ, फरीदी ने कहा। फजलू दांत निकालकर हंसने लगा। अच्छा अब मैं चला, देखो जो कुछ समझा दिया है उसके खिलाफ ना होने पाए।
अरे हमारी क्या औकात सरकार, इसके खिलाफ कुछ होए तो आपके लिए तो जान भी हाजिर है,
फजलू ने कहा। फरीदी मिलिट्री अफसर के भेस में हाथ में एक सूटकेस लटकाए बाहर आया और टैक्सी करके रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा।